संतप्त मान से शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में विवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। पेज नंबर 180 निकालो। ये जो टीका है आचार्य अमृतचंद की, उसमें अब इसी बात को दृष्टांत से दृढ़ करते हैं, यहां से पढ़ते हैं। काफी अपन ने इसके बारे में बात कर ली है, फिर भी एक दफे इस टीका को व्यवस्थित रूप से पढ़ना चाहते हैं, खासकर उस हिस्से को, क्योंकि इसके पहले जो बात कही है वो यही बात कही है। अब उसी बात को दृष्टांत से और मजबूत करते हैं, तो वही बात द्वारा आने वाली है। तो अपने ये विषय वस्तु जो इसमें है उसका कथन तो कर चुके हैं पूरा, अब निरूपण की जरूरत नहीं है। फिर भी इसे अपन पढ़ते हैं और जहां आवश्यकता पड़ेगी उसका अर्थ भी करेंगे। देखो, जिस प्रकार सभी पद स्थिर विस्तार सामान्य समुदाय से दौड़ते हुए आयात सामान्य समुदाय से रचित होते हुए पट से तन्मय ही हैं, पटमय ही हैं, उसी प्रकार सभी द्रव्य स्थिर विस्तार सामान्य समुदाय से और दौड़ते हुए आयात सामान्य समुदाय से रचित होते हुए द्रव्य ही हैं। पट माने वस्त्र, वस्त्र के उदाहरण से उनने द्रव्य की सिद्धि की है। लेकिन इसमें एक शब्द जो है उस पर अपन को विशेष ध्यान देना है, बाकी तो सब अपन कर चुके हैं। इसमें दौड़ते हुए, ये दौड़ते हुए क्या है? और ये विस्तार सामान्य के साथ नहीं लगाया है, आयात सामान्य के साथ लगाया है ना, और दौड़ते हुए आयात सामान्य समुदाय। तो कभी तुमने कपड़ा बुनते देखा है किसी कोरी के यहां, जुलाहे के यहां? जब कोई जैसे अभी तुम चंदेरी वगैरह में जाओ कभी, तो वहां पर साड़ियां बुनी जाती हैं, तो वहां पर सब वो मशीनें लगी हैं, तो जो ये लंबा जो लंबी साड़ी होती है ना, ऐसे तो सारे जो डोरे हैं बिल्कुल बांध दिए जाते हैं, उनको एकदम मजबूती से ढीलापन नहीं रहे, अन्यथा वो बुनाई सही नहीं होगी। और एक जो जो जिनसे बुनते हैं वो दौड़ता है, ऐसा 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 मशीन से दौड़ता है, पहले हाथ से दौड़ाते थे, अब वो मशीन से ऐसा ऐसा दौड़ता है। एक डोरा तो ऐसे लंबे लगे रहते हैं और दूसरा जो बुनने वाला है वो ऐसा 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 दौड़ता है, इधर से इधर जाता, इधर से इधर जाता, इस तरह वो कपड़ा बुनता चला जाता है। नहीं देखा होगा, उन्हें थोड़ी कल्पना हुई होगी मैंने कैसे बुना जाता है। मैंने दो होते हैं, एक लंबा जिसे अपन देखते हैं, जैसे थान बनते हैं ना जितने, मैंने 20 मीटर के बने और उसकी चौड़ाई 1 मीटर ही है, तो 20 मीटर का सूत ऐसा बांध दिया जाएगा बिल्कुल पूरा, एक एक नहीं जितने भी सूत आएंगे उसमें ऐसे लंबे बांध दिए जाएंगे। फिर जो वो 1 मीटर की बुनाई है ना, वो पिंडे में रहेगा वो सूत, और पिंडा मशीन से चलेगा ऐसा 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 ऐसा, इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा, और वो नीचे उठेंगे ऊपर उठेंगे, ऐसा होता है जो देखोगे जब मालूम पड़ेगा। तो वो कपड़ा बुनता जाता है। तो वो कहते हैं एक तो सामान्य स्थिर है और एक दौड़ता हुआ है, उससे बुनाई होती है। पट का देखो क्या क्या बारीकी से आचार्य ने उदाहरण को पकड़ा है। अब ये द्रव्य पे लगाना है कि द्रव्य में दौड़ते हुए क्या होगा, तो पर्याय है उनको कहा दौड़ते हुए। आयात सामान्य है जो अनादि अनंत, इसको उन्होंने दौड़ते हुए में लिया है। देखो इसमें आप, उसी प्रकार सभी द्रव्य विस्तार सामान्य समुदाय से और दौड़ते हुए आयात सामान्य समुदाय से, विस्तार सामान्य समुदाय के साथ दौड़ते हुए नहीं लगाया, स्थिर लगाना चाहिए था। मतलब स्थिर नहीं लगा है तो अपने मन से लगाओ कि स्थिर माने वो स्थिर है ना, तो इस तरह द्रव्यगुण पदार्थमक जो वस्तु है वो आयात सामान्य और विस्तार सामान्य से निर्मित है और उसमें एक दौड़ता हुआ है और एक स्थिर है। यह चक्की का पाठ होता है ना, तो उससे जो आटा पीसने का जो काम है वो कब होगा कि जब एक पार्ट बिल्कुल स्थिर रहेगा और दूसरा पार्ट दौड़ेगा। यदि दोनों ही स्थिर रहे तो काम नहीं होगा, और दोनों ही दौड़ने लगे तो काम नहीं होगा। एक को बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए और दूसरे को तेजी से दौड़ना चाहिए, तब वो कार्य की उत्पत्ति होती है। ऐसे ही कपड़े में है विस्तार सामान, ऐसे ही वस्तु के स्वरूप में है। क्या तो एक तो इसमें बताने की बात यह है, बाकी जैसे अपनी जानी हुई बात है, ख्याल में कुछ तुमको विकल्प हो तो पूछना बीच में, ऐसी कोई बात नहीं है। हो गया ना, एक एक बात हो गई। अब जिस प्रकार पट स्थिर विस्तार सामान्य समुदाय या दौड़ते हुए आयत सामान्य समुदाय गुणों से रचित होता हुआ गुणों से पृथक अप्राप्त होने से गुणात्मक ही है, उसी प्रकार स्थिर विस्तार सामान्य समुदाय या दौड़ते हुए आयात सामान्य समुदाय रूप द्रव्य गुणों से रचित होता हुआ गुणों से पृथक अप्राप्त होने से गुणात्मक ही है। अब वो बताना चाहते हैं कि वो जो सूत है वो कपड़ा ही है, ऐसा रखा है, अब ऐसा रखा जाएगा व्यवस्थित होके। तो ऐसे ही कहते जो गुण हैं द्रव्य हैं, तो गुण द्रव्य में गुण अंदर हैं ही, और उनकी जो व्यवस्था बता रहे इसलिए वे द्रव्य गुणात्मक ही है। ये काय की व्याख्या कर रहे हैं, पदार्थ द्रव्यात्मक हैं और द्रव्य गुणात्मक हैं, और द्रव्य और पर्यायों के द्रव्य गुणात्मक हैं और द्रव्य और गुणों की पर्यायें होती हैं, यानी दोनों पर्यायात्मक हैं। माने आत्मा द्रव्य जो है वो गुणात्मक भी है और गुण पर्यायात्मक है। गुण क्यों है, द्रव्य क्यों नहीं है? द्रव्य में जो पर्याय की बात करते हैं ना अपन, वो बहुत स्थूल है, मनुष्य देव नार की वो संयोग के साथ होगी, सिद्ध में होगी ही नहीं, ऐसे और कई जगह पूरी तरह से वो नहीं आएगी ना। तो इसलिए वो कहते हैं कि द्रव्य गुणमय है और गुण पर्यायात्मक, गुणों की पर्याय है ना, माने एक समय भी गुण परिणमित हुए बिना नहीं रहेगा, माने एक समय भी गुण में पर्याय नहीं आए ऐसा नहीं हो सकता, और पुरानी पर्याय जाए नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये बहुत एफिशिएंसी का काम है, एक पर्याय दो समय भी नहीं ठहर सकती है, और जब वो जाए तो दूसरी पर्याय उसमें आना ही चाहिए एक समय के भीतर। यदि ऐसी हार्ड ड्यूटी आप लोगों को दी जाए तो आप निभा सकते हैं कि नहीं साहब, बहुत कठिन काम है। कभी ना कभी तो होती है ना, कभी ना सप्ताह में एक दिन तो छुट्टी लेनी ही पड़ती है, कभी तो लेट हो ही जाते हैं, लेकिन अनादिकाल से आज तक एक समय भी इस काम में व्यवधान नहीं हुआ और अनंत काल तक होने वाला नहीं है। क्यों? वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है। प्रति समय बदले बिना रहेगी नहीं और अनादिकाल से अनंत काल तक कभी बदलेगी नहीं। अब दो जो अर्थ हैं कहां से कैसे निकलते हैं कि प्रति समय वो चेंज होगा ना पर्याय, वो तो बदलेगी बिना नहीं रहेगी, और जीव अजीव हुआ नहीं, कहां लिखा है 308 से 311 तक क्या लिखा? कैलाश जी, इसको पढ़ाई बोलते हैं कि जीव अपने क्रमबद्ध परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही रहता है, अजीब नहीं होता। अजीब भी अपने कृमि नियमित आत्म परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीब ही रहता है, जीव नहीं। ये वस्तु की व्यवस्था है। अब कह रहे इसमें से क्रम पर आया, कहां निकलती है? अब तुम्हें कहां बताएं कहां निकलती है? ये तो देखने वाले को निकले। वो कहते हैं, ऐसा कहते हैं विरोधी लोग, कि इसमें तो सिर्फ इतनी सी बात लिखी कि जीव अजीब नहीं है, अजीब जीव नहीं है। ये जीव अजीब में भेद विज्ञान कराया है, और कितनी मोटी बात है। पालवे पाठमाला पहले भाग में जो लिखी है कि जीव अजीब नहीं है, अजीब जीव नहीं है, इतनी सी बात बताई है, इनने क्रमबद्ध बताया निकाल ली उसमें से। क्योंकि उसमें साथ में ये लिखा ना कि कृमि नियमात्म परिणामयी उत्पद मानो, कि जीव अपने कृमि नियमित माने कृम से, वो कृम भी नियत है, और जो प्रति समय बदलना ये भी नियत है। कृमि नियमित आत्म अपने परिणामों से निरंतर उत्पन्न होता हुआ भी कभी अजीब नहीं होगा, इतनी सी तो बात है। बदलेगा प्रति समय, एक समय बदले बिना रहेगा नहीं, और अनादि काल से अनंत काल तक कभी बदलेगा नहीं। तो लोग कहते कैसी बातें कर रहा है, बदले बिना रहेगा नहीं और बदलेगा नहीं, दो बातें। अब एक ही वस्तु के बारे में ये कथन है। अब एक द्रव्य की अपेक्षा और एक पर्याय की अपेक्षा, एक द्रव्यार्थक नये से एक पर्यार्थक नये से, मानी उसी वस्तु को हम दो तरह से देखें। तो ये दोनों स्वभाव हैं और दोनों वस्तु में विद्यमान हैं, और इसके लिए उस वस्तु को किसी अन्य द्रव्य की रंच मात्र आवश्यकता नहीं है। अपना यह काम करने के लिए उसे किसी दूसरे की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। जैसे अपन कहें फिर अपन ने खाना खा लिया, आप कहेंगे आपको ये खाना पचाने के लिए कोई हेल्प चाहिए हो तो मैं आपकी हेल्प करने को तैयार हूं, कि हमको 8 घंटा फ्री छोड़ दो कोई हेल्प नहीं करो। अब वो खाना अपने आप ऑटोमेटिक प्रक्रिया से जो उसमें होना है वो सब होता रहेगा, उसमें ना हमें तो कुछ करना है और ना तुम्हें कुछ करना है। जो कुछ भी हम करने की कोशिश करेंगे वो सब उसके लिए डिस्टर्बेंस होगा, आप समझना। तो ऐसे वो वस्तु का स्वरूप है। अब इतना सी स्वभाव की बात है कि वो प्रत्येक वस्तु प्रति समय बदलती है और कभी नहीं बदलती है। एक तो हमारी समझ में ये बात आनी चाहिए, इनमें हमें कोई विरोध नहीं दिखना चाहिए। एकदम विरुद्ध बात दिखती है ना कि निरंतर बदलती है। अभी ये जो बात यदि द्रव्य पे हमारी दृष्टि नहीं होगी तो नहीं आ सकती समझ में, अथवा प्रमाण के द्रव्य पे हमारी दृष्टि नहीं होगी तो हमारी समझ में नहीं आ सकती है। अभी बता रहे थे आपको कौन वो ये द्रव्यार्थक में क्यों है, इसमें पर्याय पर्याय की तो बात कर रहे हैं, फिर द्रव्यार्थक में क्यों है? क्योंकि द्रव्य के इस स्वभाव को समझाया जा रहा है। तो अब ये कह रहे हैं कि वो वस्तु जो अनादि अनंत से अनंत काल तक है, माने हम अनादि से आत्मा हैं और अनंत काल तक आत्मा रहेंगे, तो एक हम आत्मा से बदल ना जाए, ये आपके हित में है कि आपके अहित में, सोचो। यदि एक आध दो दफे अपन को बदलने की सुविधा रहे तो ठीक रहेगा ना, बिल्कुल ही अनादि काल से अनंत काल तक, एकदम ये तो बहुत लंबा मामला है नहीं। तो क्यों तो कभी एक आध दफे आप जीव से अजीब होना चाहते हैं है? तो यही तो लिखा है क्या, जीवो ही ताबत, क्या लिखा है? जीव, तो तुम जीव हो और तुम जीव से बदल के क्या होना चाहते हो? कि धर्म द्रव्य हो जाए तो बहुत बढ़िया, क्यों धर्म हो जाए, धर्म तो अच्छी बात है ना। माने अपन इस बात की पक्की गारंटी चाहते हैं कि हम जीव जीव ही रहें अनंत काल तक, हम अजीब ना हो जाएं, और वो तुम्हारे स्वभाव में पड़ा है, वो गारंटी तुम्हारे किसी पराधीन नहीं है। कोई भगवान भगवान आएगा जो वो बनाएगा, फिर एक प्रलय काल आ जाएगा, फिर द्वारा भगवान आएगा, फिर वो रचना करेगा, ऐसा कोई तुम किसी के चक्कर में नहीं हो। माने ये हमारे लिए सुखमय है ना, इस बात का हमें ज्ञान हो जाए कि हमारी ये बात बहुत पक्की है, नक्की है कि हम में कभी कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, यानी हम जीव से अजीव कभी होने वाले नहीं हैं। अब हमने वो काय की दृष्टि से कहा, द्रव्य की दृष्टि से, माने जीव द्रव्य अजीव नहीं होगा। कौन सा जीव? द्रव्यार्थिक नय का जीव। ये द्रव्यार्थिक नय का द्रव्य है, क्योंकि वो प्रमाण के द्रव्य में तो पर्याय ही शामिल होती है, तो फिर पर्याय वाला पक्ष आ जाएगा कि नहीं नहीं कभी तो बदल जाएगा। तो वो द्रव्य जो है उसमें कोई परिवर्तन कभी नहीं होगा, तो ये हमारे आनंद का कारण है, है? हमारे आनंद का कारण है। अब हमें घबराहट हुई थी, यार ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, हमारे आनंद का है। कितनी भी अच्छी पोजीशन में हो कोई, क्यों साहब आप प्रधानमंत्री बने हैं तो आप मरने तक प्रधानमंत्री ही बने रहेंगे, क्यों? तो इसके लिए कितने लालायित रहते हैं लोग कि गद्दी पे ही मरूं, क्यों? गद्दी पे मरने से क्या हो जाता है? गद्दी से उतर के मरे तो क्या होता है? अरे साहब वो जो है ना, कौन सा दिल्ली में कौन सी जगह है, क्या बोलते उसे, राजघाट, राजघाट पे जगह नहीं मिलेगी यदि गद्दी से उतर के मरे तो। समझ रहे ना, कुछ समझ रहे क्या कह रहा हूं मैं? राजघाट पे जगह नहीं मिलेगी क्या? वो जो प्रधानमंत्री लोग होते हैं उनको राजघाट पे जलाया जाता है, फिर वहीं उनका वो मैं समझ लो छतरी बना दी जाती है, और वो छतरी पे विदेश के लोग नेता आते हैं तो वो सब उसके ऊपर माला माला चढ़ाने जाते हैं, तो हर साल में चार दफे याद किया जाता है, तो इसलिए मुझे इसमें मरना है। क्यों? ठीक है, 150 वर्ष के, 125 वर्ष के हो जाओ तो प्रधानमंत्री बने रहना, क्योंकि फिर तो मेरे से काम नहीं होगा, क्यों? तो एक दफे बदलने की सुविधा होना चाहिए, तो फिर मुझे राष्ट्रपति बना देना, क्यों? तो तुम अनादिकाल से जीव ही बने रहो अनंत काल तक, और बदलने की कि जब सिद्ध हो जाओ तब भी, यहां तब भी तुम जीव ही रहोगे, समझ लो, सोच लो अच्छी तरह से। वस्तु का स्वरूप ऐसा है, इसमें किसी के हाथ में कुछ नहीं है। अब इसमें हमें आनंद आना चाहिए, इसमें यदि हमारे चित्त में एक विकल्प खड़ा हो गया कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं, कुछ ठीक हो जाए तो अच्छा है, तो वह गए काम से। अब ये हो गया कि आज इतना तो हद हो गई, बदलने की थोड़ी सुविधा तो होनी चाहिए। तो जो मतलब पर्याय की पक्ष की, तो कहते अरे भाई साहब क्यों घबराते हो, एक समय भी बिना बदले आप नहीं रहेंगे, क्यों? कुछ ऐसे आलसी प्रकृति के आदमी होते हैं, विद्यार्थी हूं, कि सर्दियों में तो मैं नहाऊंगा ही नहीं, 4 महीने की मुझे छुट्टी मिल जाए कोई मुझे टोके नहीं क्यों? यदि सुविधा मिल जाए तो मजा आ जाए, क्यों? चलो तुमको देते हैं ये सुविधा, 4 महीना में तुम्हें कभी नहीं नहाना पड़ेगा, पर ये बात पक्की होनी पड़ेगी कि नहीं सा एक आध दो दफे तो तुम्हें पक्की नहीं, एक आध दो दफे तो छूट मिलना चाहिए। मैंने वो भी पक्का नहीं चाहता ना, हम पक्की अनित्यता चाहते हैं और न पक्की नित्यता चाहते हैं। दिक्कत यह है कि वस्तु के स्वभाव में अनित्यता भी पक्की है और नित्यता भी पक्की है, समझ रहे हैं ना? अब जिस दिन हमको नित्यता और अनित्यता दोनों एक पक्की हो और हमें आनंद आने लग जाए, अब समझ लो हम मोक्ष मार्ग में हैं। ऐसा वस्तु स्वरूप हमें पसंद आने लग जाए, ऐसी नियमावली हमें पसंद आने लग जाए, समझ में आए ना? अनादिकाल से अनंत काल तक कभी बदलेगा नहीं, और एक समय भी बदले बिना रहेगा नहीं। ये दूसरी सुविधा है ना कि एक समय भी बदले बिना रहेगा नहीं यदि इसको हम वापस कर लें तो निगोद में ही फंस के रह जाओगे बेटा। अनादि से तो निगोद में हो ना, तो फिर निकलने की सुविधा नहीं रहेगी। बोलो क्या पसंद है? नहीं नहीं, नहीं बदलना तो होना चाहिए। अरे वस्तु स्वरूप इतने तेरे पक्ष में है कि इतना पक्षपात दुनिया में कहीं नहीं होता कि संसार से माने दुख अवस्था से मोक्ष में माने सुख अवस्था में तो जाते हैं, फिर मोक्ष में से लौट के संसार में नहीं आते थे। दुखी जीव दुखी से सुखी तो होते हैं, फिर सुखी से दुखी नहीं होते। ये अन्याय नहीं है, ये होना चाहिए तो दो ही हो जाना चाहिए कि कुछ नहीं हो। लेकिन एक वस्तु का स्वरूप हमारे पक्ष में इतना पक्षपात से युक्त है, भगवान तेरा कितना पक्षपात करते हैं देख है? अनंत जीव इस संसार से मोक्ष में चले गए, अनंत सुखी हो गए, एक भी मोक्ष से संसार में लौट के नहीं आए। माने बुरे से अच्छा परिवर्तन तो होता है, अच्छे से बुरा परिवर्तन नहीं होता। तो ये वस्तु स्वरूप भी हमारे हित में है ना, इसे स्वीकृत करने में हमें क्या दिक्कत हुई है? अब ये वस्तु में है ये किस बात से बता रहे जे? विस्तार सामान्य समुदाय और आयात सामान्य समुदाय। आपको बहुत अटपटे लग रहे होंगे ये क्या विस्तार, ये शब्द ऐसे याद रखो का थोड़े दो शब्द तो याद कर लो, कौन से दो? और आयात सामान्य समुदाय। कल मैं सबसे पूछूंगा और जिस पर मुझे शक होगा या इसे पता नहीं उससे पूछूंगा, क्यों? जिसे पता है उससे पूछने से क्या फायदा है? क्यों रमेश जी चलेगा? अभी पूछ लू। माने ये वस्तु का स्वभाव है विस्तार सामान्य समुदाय और आयात सामान्य समुदाय, इन दोनों से वस्तु बनी हुई है। ये गे तत्व प्रज्ञापन है ना, तो गे माने वस्तु। कौन सी वस्तु? जो हमें जाननी है, वस्तु का स्वभाव जो हमें जानना है। तो वस्तु का मूल स्वभाव आपको बताना शुरू किया हमने। बोलो क्या है ना गे तत्व प्रज्ञापन? यानी मूल स्वभाव वो जो चीज कभी बदले नहीं और कभी बदले बिना रहे नहीं, ऐसी शक्ति तेरे स्वभाव में पड़ी है। उसके लिए तुझे कहीं किसी की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। उस सुबह के प्रवचन में आ रहा था ना कि वो सामान इसको केवल ज्ञान भी कर्म के क्षय से चाहिए, उसमें ही कर्म का योगदान चाहिए। हमें नहीं चाहिए ऐसा मोक्ष, हमें नहीं चाहिए ऐसा केवल ज्ञान जो कर्म से मिले, हमारे शत्रु की कृपा से मिले। केवल ज्ञान में हम में स्वतंत्र नहीं है, केवल ज्ञान हम में हमसे हो कि नहीं ज्ञान अवनी कर्म के क्षय के बिना तो नहीं होगा। अरे क्षय माने अभाव, कि क्षय है निमित्त, उसमें निमित्त है माने छह माने उसका अभाव है निमित्त, उसका अभाव निमित्त है। इसको ये उल्टो निमित्त का अभाव है, क्या समझ जाए? निमित्त अभाव निमित्त है माने उसमें निमित्त का अभाव है, माने हम पूरे स्वाधीन हो गए। कैसे निपटे मैं करुणा नियोग वालों की कहीं निंदा नहीं कर रहा हूं, उन्हें केवल ज्ञान भी कर्म के क्षय से चाहिए और हमें राग भी कर्म के उदय से नहीं चाहिए। वो भी हमारा विभाव स्वभाव है। ये आ रहा था सुबह, सुना था जिसने बताया था उसका अर्थ, उसने ये बताया था कि क्या कहा मैंने, ये बात बताई थी किसी ने, बताने वाले ने, समझ में आई क्या कह रहा हूं मैं? कितना फर्क है अध्यात्म में और इस जगत के स्वरूप में। तो जब तक नहीं होगा केवल ज्ञान आनंद नाम का क्षण, दुनिया की कोई ताकत केवल ज्ञान पैदा नहीं कर सकती। और वो कहता है जो भंगी के झाड़ने से जिए ऐसी बेटा मुझे नहीं चाहिए। ये सुनी तुमने कभी कि जो भंगी के झाड़े से जिए ऐसा बेटा मुझे नहीं चाहिए। किसी के बच्चे होते थे और वे बार बार मर जाते थे, होते नहीं थे और होते थे तो मर जाते थे। पहले बहुत होता था ऐसा, क्योंकि बच्चों के इलाज की प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी, डिलीवरी की प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी, इसलिए बच्चों की मौत बहुत होती थी। तो तरह तरह के इलाज चलते थे। तो एक गांव में एक वो था, उसे आजकल तो कह नहीं सकते वो नाम, समझे ना, वो कहावत में क्या कहा था अभी समझ गए ना, क्योंकि उसके धारे से जिए ऐसा बेटा हमें नहीं चाहिए, समझे ना। तो वो कहते वो गांव का वो था और वो आकर के उसको झाड़ता था ऐसा फूल लगा लगा करके, फिर उसके जो बच्चा होता था फिर वो मरता नहीं था। ऐसी मान्यताएं मूर्खों की थी क्या? तो किसी के चार छह बच्चे मर गए होंगे, तो उससे कहा कि अब की बार शेर जी तुम उस बच्चे को जब पैदा हुए तो फला से बुला करके वो झड़वा लेना। क्या समझ में आया कि नहीं आया? तो वो बोला कि मुझे ऐसा बेटा नहीं चाहिए जो भंगी के झाड़ने से जिए। इतनी जीवन शक्ति नहीं है उसमें, ऐसे लोगों का सहयोग वो क्या करेंगे हमारी सेवा, तो जिंदगी में झड़वाते ही रहेंगे हम। मैंने इतना कमजोर है, हमको नहीं चाहिए, तो हमें ऐसा भगवान केवल ज्ञान नहीं चाहिए जो किसी कर्म की कृपा से हो। क्या किसाब लिखा लिखा होगा, हम सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन वो जो केवल ज्ञान नहीं हो रहा है वो क्यों नहीं हो रहा आप बताओ क्यों? वो तो साहब कर्म के उदय की वजह से नहीं हो रहा क्या? कि यदि कर्म की उदय से नहीं हो रहा होगा तो फिर वो होने के लिए फिर कर्म के सहयोग की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? बिल्कुल नहीं, हमारा विभाव स्वभाव है उसकी वजह से नहीं हो रहा। और हमारे स्वभाव में जिस समय जिस पर्याय में केवल ज्ञान होने की योग्यता होगी, क्षमता होगी और वो अनादि से नक्की है, वो उस समय गारंटी से हो जाएगा। और उस वक्त कर्म का, फिर कर्म का क्या होगा? कि कर्म का कर्म में जो होना होगा सो होता रहेगा। लेकिन तुम बता दो ना क्या होगा, करुणा नियोग वालों से पूछ लेना। क्यों हम उसको इतना स्थान भी नहीं देना चाहते है? हमारा वो व्यवहार स्वभाव है और हमारा ये स्वभाव स्वभाव है, समझ में आया ना आपकी ना? क्या है अपना स्वभाव स्वभाव? विस्तार सामान्य समुदाय और कैसा है सामान्य समुदाय? दौड़ता हुआ। हाँ ऐसा बोलना, विस्तार सामान्य समुदाय और दौड़ता हुआ आयात सामान्य समुदाय, समझ गया? वो दौड़ता हुआ चाहिए उसमें, क्योंकि उसका स्वभाव है 24 घंटा दौड़ना, ये स्वभाव है ना। जब वो होता घोड़ों की वो होती है ना, दौड़ते हैं ना घोड़े, कौन पास हुआ कौन, समझ गया? आदमियों की जो होती है लंबी दौड़, तो ये कभी कभी दौड़ते होंगे ना वे लोग कि 24 घंटा दौड़ते रहते हैं। हमने सुना है सूरज के रथ में कोई घोड़े होते हैं, तो मैंने सुना होगा ना साहित्य में, और वे 24 घंटा दौड़ते ही रहते हैं, उन्हें कभी आराम नहीं मिलता है, कभी धनता दौड़ते। मैंने सूरज नित्य गति है ना, चाहे वो अपने आप चल रहा हो, चाहे घोड़े दौड़ा रहे हो और चाहे कोई मशीन दौड़ा रही हो। आजकल वैज्ञानिक कहेंगे मशीन लगी है ऐसी, लेकिन वो नित्य गतिया है ना। नित्य गतिया माने कि निरंतर गमन करेंगे, निरंतर गमन करेंगे, निरंतर गमन। ऐसा निरंतर दौड़ता हुआ पर्याय स्वभाव है हमारा। और उसमें आधा किरण, अपूर्व किरण, अनवृत्ति किरण जैसा भी चक्कर नहीं है कि वो चाल तेज हो जाए, मद्दी हो जाए। 10 आदमी पीछे दौड़ रहे थे, आगे दौड़ रहे थे, साथ में दौड़ रहे थे, क्यों? क्या समझ में आया शांति जी क्या कह रहा हूं मैं? वो उनकी प्रति समय दौड़ अनंत जीवों की, अनंत द्रव्यों की बिल्कुल एक सी है। अनवृत्ति किरण जैसे, परिणामों जैसी, वहां से लेकर आदि से लेकर अंत तक प्रति समय अपने में दौड़ता ही रहेगा, दौड़ता ही रहेगा, दौड़ता ही रहेगा। फिर मोक्ष में चला जाएगा, फिर तो आराम मिलेगा कि नहीं? क्यों मिल जाएगा? कि वहां भी दौड़ता ही रहेगा, क्यों? पर्याय स्वभाव है ना, पर्याय खत्म थोड़ी हो जाएगी। वहां भी प्रति समय बदलता ही रहेगा, बदलता ही रहेगा, बदलता ही रहेगा। ये कर का कुर्ता पहना है, देखो ठीक है, तो कल नहीं बदलू तो चलेगा ना? क्यों? क्या वो ठीक हो चाहे बुरा हो, तुम राजकुमार हो ना, तो तुम्हें तो रोजाना कुर्ता बदलना ही पड़ेगा। क्या ऐसा नहीं चलता है? क्यों? एक कल की धोती मंदिर की पड़ी है पूजा करने के लिए, तो चलेगी ना? क्या नहीं, वो तो धुली हुई होना चाहिए, रोज ही नहीं। वो मैली है कि साफ है, उसकी धुलाई इस हिसाब से नहीं होती है। क्यों? उसकी शुद्धि दूसरी टाइप से होती है। ऐसा वस्तु का स्वभाव है, दो तरफा, कभी ना बदले, निरंतर बदलता रहे। देखो हो गया, अपन आगे बढ़ते हैं। अब जिस प्रकार ऊपर जो बात थी ना, वो एक बात अपनी खत्म हो गई। जिस प्रकार अनेक पटात्मक, द्विपटिक, त्रिपटिक, समान जाति द्रव्य पर्याय हैं, उसी प्रकार अनेक पुद्गलात्मक, द्विअणुक, त्रिअणुक आदि समान जातीय द्रव्य पर्याय हैं। देखो, जिस प्रकार अनेक पटात्मक, अनेक पटात्मक माने अनेक प्रकार के वस्त्र, अनेक प्रकार के वस्त्र माने रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र, है ना, अनेक प्रकार के वस्त्रों से निर्मित द्विपटिक, अपने कहते हैं ना, ये जो है इसमें 25% कॉटन है, 75% क्या है, टेरालिन है, जो भी कुछ होता है ना उसमें, ऐसे द्विपटक, त्रिपटक, समझेंगे ना, ऐसे वस्त्र होते हैं ना, जैसे समान जाति, तो समान जाति की माने वो भी पट जाति का है, वो भी पट जाति का है, वो भी मतलब रेशमी भी पट जाति का है, सूती भी पट जाति का है, ऐसे ही ये आत्मा में भी है ना। उसी प्रकार अनेक पुद्गलात्मक, द्वि अणु, दो अणु वाला स्कंद, तीन अणु वाला स्कंद आदि समान जाति द्रव पर्याय हैं। जिस प्रकार देखो, अनेक रेशमी सूती पटों से बने हुए द्विपटक, अब लगता है द्विपटक क्या होता है, त्रिपटक क्या होता है, पट माने होता है वस्त्र, और द्वि माने दो, और फिर उसमें वो एक प्रत्यय लग गया पटक, माने दो प्रकार के वस्त्रों से बना हुआ कपड़ा, वो भी वस्त्र, वो भी वस्त्र, समझ गए ना। त्रिपटक आदि असमान जाति द्रव्य पर्याय हैं। असमान जाति मतलब एक प्योर सूती, एक प्योर रेशमी, एक प्योर टेरालिन का, एक प्योर सूती है ना, और एक मिला हुआ, देखो। उसी प्रकार अनेक जीव पुद्गलात्मक, देव मनुष्य आदि असमान जाति द्रव्य पर्याय हैं। जैसे वहां गुण पर्यायों पर घटित किया था, ऐसे ही यहां द्रव्य पर्यायों पर घटित किया। जिस प्रकार कभी पट में अपने स्थूल अगुण लघु गुण द्वारा काल क्रम से प्रवर्तमान अनेक प्रकार रूप से परिणमित होने के कारण अनेकत्व की प्रतिपत्ति गुणात्मक स्वभाव पर्याय हैं, उसी प्रकार समस्त द्रव्यों में अपने अपने सूक्ष्म अगुण लघु गुण द्वारा प्रतिमय प्रकट होने वाली सत स्थान पतित हानि वृद्धि रूप अनेकत्व की अनुभूति रूप गुणात्मक स्वभाव पर्याय हैं। ये क्या कह रहे हैं? एक स्वभाव पर्याय, एक विभाव पर्याय। तो जो विवाह पर आए तो अपन को पलटती हुई दिखती हैं कि देखो ये आम है, हरे से पीला हो गया है, खट्टे से मीठा हो गया है। अब किसी में कोई ऐसी भी चीजें हैं ना उसी आम में कि जो बिल्कुल बदलती नहीं है, मन हरे से पीला नहीं होता है, वैसी की वैसी ही रहती हैं, तो हमें मालूम नहीं पड़ेगा कि ये बदल नहीं। तो क्या है ऐसी क्या है, ऐसा क्या उदाहरण दे रहे हैं कि जो अपने पलटता नहीं है, तो उन्हें सदगुणी हानि वृद्धि नहीं है। समझे ना, कि जो केवली भगवान के ज्ञान में आई है और उनने हमें बता दी है कि इसमें अभय आगे प्रतिच्छेद है, उनमें कम ज्यादा ऐसा होता रहता है। तो उन्होंने कहा वो द्रव्य पर्याय हैं, अब वो कोई कर्म वर्म की वजह से किसी की वजह से नहीं होती हैं, और वो शांति से उसमें मतलब रहती हैं, ख्याल में है ना। तो ऐसी स्वभाव पर्याय और बाकी की विकार पर्याय हैं ही, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान, यानी केवल ज्ञान स्वभाव पर्याय है, तो इनमें विभाव पर्याय है। जिस प्रकार पट में रूपादिक के स्वपर के कारण प्रवर्तमान पूर्वोत्तर अवस्था में होने वाले तारतम्य के कारण देखने में आने वाली स्वभाव विशेष रूप अनेकत्व की आपत्ति, अनेकत्व की आपत्ति माने अनेक बना उसमें होते ही, आपत्ति माने कोई जी आपत्ति में आपत्ति नहीं है कि अदालत में हमने एप्लीकेशन लगा दी कि हमें इस बात पर आपत्ति है। अनेकत्व की आपत्ति माने अनेक बना उनमें होता है, ऐसा गुणात्मक विभाव पर्याय हैं। उसी प्रकार समस्त पर द्रव्यों में रूपादि के या ज्ञान आदि के स्वपर के कारण प्रवर्तमान पूर्वोत्तर अवस्था में होने वाले तारतम्य के कारण देखने में आने वाली स्वभाव विशेष रूप अनेकत्व की आपत्ति गुणात्मक विभाव पर्याय हैं। माने अनेकत्व जिससे दिखाई देता है, अनेकपना। अब सद्गुणी हानि वृद्धि में आपको अनेकत्व दिखाई नहीं देगा, तो वो आपको भगवान की आज्ञा के हिसाब से मानना पड़ेगा। और ये बाहर की कुछ पर्यायें ऐसी हैं जिनमें आपको अनेकत्व दिखाई देगा। वस्तुतः यह सर्व पदार्थों के द्रव्यगुण पर्याय की प्रकाशक माहे पारमेश्वरी व्यवस्था भली है, उत्तम है, पूर्ण है और योग्य है, दूसरी कोई व्यवस्था नहीं है। देखो कितने शब्द डाले, किसी हिंदी वाले पंडित ने नहीं लिख दिए, संस्कृत में देखो पढ़ो पक्तियां कौन सी हैं। यम ही सर्व पदार्थानाम द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव प्रकाशिका पारमेश्वरी व्यवस्था। पारमेश्वरी व्यवस्था जानते, परमेश्वर की बनाई हुई, अपने यहां तो बनाता नहीं कोई परमेश्वर, लेकिन उनके यहां परमेश्वर बनाता है ना, तो उसके लिए बहुत सम्मान जगत में रहता है और कोई आदमी उसके विरुद्ध कुछ बोलता नहीं है। तो आप क्या, आप भी उसके विरुद्ध आपका भाव नहीं बने, इसलिए उसे पारमेश्वरी व्यवस्था कह रहे हैं। अब ऐसा समझ लो कि उनने परमेश्वर ने बनाई वो व्यवस्था दादा, और अपने परमेश्वर ने बताई वो व्यवस्था। व्यवस्था तो वस्तु के स्वरूप में है, लेकिन अपने परमेश्वर ने अपन को बताई, इसलिए अपन उसे पारमेश्वर ही बोलते हैं। इसे भागवत बोलते हैं, भागवत क्या है, भागवत शास्त्र है उनके अध्ययनों के यहां एक है ना, तो उसे भागवत माने भगवान का बनाया हुआ शास्त्र भागवत, इसलिए बहुत महिमा उसकी होती है ना। तो अपने यहां भी भगवती आराधना है, तो भगवती कहां से होगी, अपने तो भगवान ही होते हैं, भगवती तो होती नहीं है। ये भाषा का कमाल है कि आराधना शब्द जो स्त्रीलिंग है ना, तो भगवान की आराधना को भगवती बना दिया। हमने कितनी भगवतियां खड़ी कर ली, जबकि जैन दर्शन में भगवती होती नहीं। क्यों है? भागवत का मतलब समझे ना, भागवत जैसे गुरुदेव बोलते भागवत शास्त्र है, ये भगवान का कहा हुआ शास्त्र, कई देव गुरुदेव के प्रवचन में आता है। देखो क्या कहां पढ़ रहे थे, यह सर्व पदार्थों के द्रव्यगुण पर्याय की प्रकाशक, देखो निर्मापक नहीं, कितनी लिखी थी दादा, ये प्रकाश किया भगवान ने, पारमेश्वरी माने परमेश्वर के द्वारा बताई गई व्यवस्था आ गई ना प्रकाशक। परमेश्वरी व्यवस्था एकदम अच्छी है, भली है, उत्तम है, पूर्ण है, योग्य है। हम इन शब्दों में से बहुत संतुष्ट रहते हैं ना, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, मुझे व्यवस्था है, लेकिन ये बता रहे बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी है, उत्तम है, इतने लगाए तो फिर हमको सब रहा है। आप ये कहेंगे नहीं, आप चिंता मत करो, आप पधार जाना तो सब आपकी सब व्यवस्था मिलेगी। क्यों? कि भोजन की कहां सब मिलेगी, कोई बात नहीं, अच्छी अच्छी व्यवस्था कहां सब अच्छी मिलेगी, उत्तम क्या उत्तम, ये बन क्या ये बन क्यों समझ गया, ये है क्योंकि हमको ये विशेषण लगाए बिना हमको मजा नहीं आता है? अपने जो विद्यालय में व्यवस्था है वो भी कैसी है, पारमेश्वरी उत्तम भली। देखो क्या लिखा है, कहां पारमेश्वरी व्यवस्था भली है, उत्तम है, पूर्ण है और योग्य है, दूसरी कोई व्यवस्था है ही नहीं। ऐसा नहीं कि ये बढ़िया और ये खराब व्यवस्था भी कहीं होगी, है ना, क्योंकि बहुत से जीव पर्याय मात्र का अवलंबन करके तत्व की अप्रतिपत्ति रूप मूल को प्राप्त होते हुए परसमय होते, ये पज्जय मूढ़ा ही परसमय का अर्थ है। ये पारमेश्वरी व्यवस्था को नहीं समझते हैं और पर्यायों को उल्टा सीधा मानकर और उनमें अपना परिवर्तन करने की भावना रखकर वो उसमें एकत्वमत्व करते हैं, तो वे अज्ञानी हैं, वो उनका मोह के द्वारा होता है। क्यों? देखो ये अपनी व्यवस्था बहुत अच्छी, आपने देखी है कभी, अच्छी है, बहुत बढ़िया है, उत्तम है, पारमेश्वरी है, क्या खाने की व्यवस्था आप देखोगे जब पता चलेगा। अरे भैया जी, इतनी सुंदर पढ़ाई के साथ व्यवस्था है तो जो भी रूखी सूखी नहीं होए नहीं होए कैसी भी हो तो भी उत्तम है, और दूसरी जगह बहुत ही बढ़िया हो है और पढ़ाई की कोई बात ही नहीं हो और एक दूसरे करता है इधर भी समझाया जा रहा हो, क्यों है? तो वो बढ़िया क्या, ये बढ़िया, बोलो क्या करना है, ये ही बढ़िया है। बिगर ये जो वस्तु के स्वरूप में जो व्यवस्था है ये पारमेश्वरी, पारमेश्वरी क्यों कहा कि परमेश्वर के द्वारा प्रकाशित की गई, इसमें हमने नमक मिर्च नहीं लगाया, हम तो सिर्फ आपको बता रहे हैं कि, लेकिन जो भगवान ने गुरुदेव की भाषा में कहें तो 100 इंद्रों की उपस्थिति में, गणधर देव की उपस्थिति में ये बैठ के कहा था समूह शरण में, ये वही व्यवस्था है, वही स्वरूप है, इसका नाम है प्रकाशक पारमेश्वरी व्यवस्था है उक्त। अब ये तो अपन ने पढ़ लिया है ना, उक्त कंपूर्ण कथन का सार यह है, वही बातें उसमें भी थी, यही इसमें भी है ना, समझिए ना, लेकिन उसको पढ़ लेने से इसको अपन को जरा जल्दी समझ में आ गया। ये द्विपटक त्रिपटक में घबराना नहीं, इन्हें ज्यादा कोई ऐसा नहीं है, वो समझ में नहीं भी आएगा तो चलेगा, ये पारमेश्वरी व्यवस्था समझ में आ जाना चाहिए। अब अपनी गाथा अगली है, ये गाथा वो है कि जिस गाथा में पर समय और स्वसमय की व्याख्या बहुत अच्छी बताई है, और समय सार में और पंचास्त्री काय में उसकी तुलना जो समय सार में बताई है, समय सार में दूसरी गाथा में है ना, जिसमें ये कहा है कि आत्मा में क्या पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित वो परसमय है और आत्मा के प्रदेशों में स्थित वो स्वसमय है, और यहां ये परिभाषा दी जो पर्यायों में मूढ़ है वो परसमय है और जो अपने आत्म स्वभाव में है वो स्वसमय है। इसमें जो सब बताई है ना परिभाषा, ये दूसरी गाथा में जो पज्जय मूढ़ा ही परसमय जो पिछली गाथा में कहा है और जिसे एक लेन में निपटा दिया अंत में, उसको चूंकि उन्हें यही बात दूसरी गाथा में कहनी है, इसलिए टीकाकार ने देखा कि दूसरी गाथा में ये बात आने वाली है, इसलिए इनने इसमें विस्तार नहीं दिया है, अब ये दूसरी गाथा में स्वसमय और परसमय के बारे में बताएंगे, तब ना तीन चार दिन कम से कम वो चलेगा, अच्छी तरह से उसे पड़ पड़ा करके आना।